ये हफ्ता वार बाइबल का दरसीवास प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट की जानब से है, जो न्यू जर्सी अमेरिका में वाक़ है। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारी वेबसाइट मुलाहिज़ा करें www.plainfieldcs.com। ये सबक यकम नवंबर 2020 बरोज़ इतवार हफ्ता के इख्तिताम पर आपके मुताले की गर्ज से तैयार किया गया है। मज़मून: दायमी सज़ा। सुनहरी मतन: तवारीख। ऐ सब अहले ज़मीन, खुदा उनके हजूर गाओ, रोज़ बरोज़ उसकी निजात की बिशारत दो। जवाबी मतालिया: ज़बूर। आओ हम खुदावन के हजूर नगमा सराय करें, अपनी चट्टान के सामने खुशी से ललकारें, शुक्र करते हुए उसके हजूर हाजिर हों, मजमूर गाते हुए उसके आगे खुशी से ललकारें। क्योंकि खुदावन खुदाए अजीम है और सब इलाहियों पर शाह अजीम है। ज़मीन के गहराव उसके कब्ज़ा में हैं, पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं। समंदर उसका है, उसी ने उसको बनाया और उसके हाथों ने खुशकी को भी तैयार किया। आओ हम झुकें और सजदा करें और अपने खालिक खुदावंद के हजूर घुटने टेकें। दरसीवाज बाइबल में से। ज़बूर। ऐ खुदा, अपनी शफ़क़त के मुताबिक मुझ पर रहम कर, अपनी रहमत की कसरत के मुताबिक मेरी खताएं मिटा दे, मेरी बदी को मुझसे धो डाल और मेरे गुनाह से मुझे पाक कर। क्योंकि मैं अपनी खताओं को मानता हूँ और मेरा गुनाह हमेशा मेरे सामने है। मैंने फ़क्त तेरा ही गुनाह किया है और वो काम किया है जो तेरी नज़र में बुरा है, ताकि तू अपनी बातों में रास्त ठहरे और अपनी अदालत में बेआब रहे। यूना। खुदाउन का काम यूना बिन अमती पर नाजिल हुआ कि उठ, उस बड़े शहर नैनवा को जा और उसके खिलाफ मुनादी कर, क्योंकि उनकी शरारत मेरे हजूर पहुंची है। लेकिन यूना खुदाउन के हजूर से तरसीस को भागा और याफा में पहुंचा, और वहां उसे तरसीस को जाने वाला जहाज मिला और वो किराया देकर जहाज में सवार हुआ, ताकि खुदाउन के हजूर से तरसीस को अहले जहाज के साथ जाए। लेकिन खुदावंद ने समंदर पर बड़ी आंधी भेजी और समंदर में सख्त तूफान बरपा हुआ और अंदेशा था कि जहाज तबाह हो जाए। तब वो खौफजदा होकर उसे कहने लगे, तूने ये क्या किया? क्योंकि उनको ये मालूम था कि वो खुदावंद के हजूर से भागा है, इसलिए कि उसने खुद उनसे कहा था। तब उसने उनसे कहा, मुझको उठाकर समंदर में फेंक दो तो तुम्हारे लिए समंदर साकन हो जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये बड़ा तूफान तुम पर मेरे सबब से आया है। और उन्होंने यूना को उठाकर समंदर में फेंक दिया और समंदर का तलाकम मौकूफ हो गया। लेकिन खुदावंद ने एक बड़ी मछली मुकर्रर कर रखी थी कि यूना को निगल जाए, और यूना 3 दिन 3 रात मछली के पेट में रहा। यूना। तब यूना ने मछली के पेट में से खुदावंद अपने खुदा से दुआ की, मैं अपनी नज़रें अदा करूंगा, नजात खुदावंद की तरफ से है। और खुदावंद ने मछली को हुक्म दिया और उसने यूना को खुशकी पर उगल दिया। यूना। तब यूना खुदावंद के कलाम के मुताबिक उठकर नैनवा को गया, और यूना शहर में दाखिल हुआ और 1 दिन की राह चला। उसने मुनादी की और कहा, 40 रोज़ के बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा। तब नैनवा के बाशिंदों ने खुदावंद पर ईमान लाकर रोज़ा की मुनादी की, और अदना और आला सब ने टाट उड़ा। और ये खबर नैनवा के बादशाह को पहुंची, और वो अपने तख्त पर से उठा और बादशाही लिबास को उतार डाला और टाट ओढ़ कर राख पर बैठ गया। जब खुदावंद ने उनकी ये हालत देखी कि वो अपनी अपनी बुरी रवश से बाज आए, तो वो उस अजाब से जो वो उन पर नाजिल करने को था बाज आया और उसे नाजिल ना किया। यसाया। उसके पांव पहाड़ों पर क्या ही खुशनुमा है जो खुशखबरी लाता है और सलामती की दुआ करता है और खैरियत की खबर और निजात का इश्तिहार देता है, जो सहयोग से कहता है तेरा खुदा सल्तनत करता है। अपने निगबानों की आवाज़ सुन, वो अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, वो आवाज़ मिलाकर गाते हैं, क्योंकि जब खुदा उनसे उनको वापस लाएगा तो वो उसे रूबरू देखेंगे। ऐ यरूशलेम के वीरानों, खुशी से ललकारो, मिलकर नगमा सराई करो, क्योंकि खुदा ने अपनी कौम को दिलासा दिया, उसने यरूशलेम का फिदिया दिया। खुदा ने पाक बाजू तमाम कौमों के आगे नंगा किया है और सरजमीन सरासर हमारे खुदा की निजात को देखेगी। मत्ती। यीशु आया। लूका। और फरीसी और फकीर बुड़बुड़ा कर कहने लगे, ये आदमी गुनहगारों से मिलता और उनके साथ खाना खाता है। उसने उनसे ये तमसील कही कि तुम में से कौन सा ऐसा आदमी है जिसके पास 100 भेड़े हों और उनमें से एक खो जाए तो 99 को बियाबान में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए ढूंढता ना रहे। फिर जब मिल जाती है तो वो खुश होकर उसे कंधे पर उठा लेता है और घर पहुंचकर दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाता है और कहता है, मेरे साथ खुशी करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी तरह 99 रास्तबाजों की निस्बत जो तौबा की हाजत नहीं रखते, एक तौबा करने वाले गुनाहगार के बायस आसमान पर ज़्यादा खुशी होगी। या कौन सी ऐसी औरत है जिसके पास 10 दिरहम हों और एक खो जाए तो वो चिराग जलाकर घर में झाड़ू ना दे और जब तक मिल ना जाए कोशिश से ढूंढती ना रहे, और जब मिल जाए तो अपने दोस्तों और पड़ोसियों को बुलाकर ना कहे कि मेरे साथ खुशी करो क्योंकि मेरा खोया हुआ दिरहम मिल गया है। मैं तुमसे कहता हूँ, एक तौबा करने वाले गुनाहगार के बायस खुदा के फरिश्तों के सामने खुशी होती है। ज़बूर। मेरे गुनाहों की तरफ से मुंह फेर ले और मेरी सब बदकारियां मिटा डाल। ऐ खुदा, मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातन में असर नौ मुस्तकीम रू डाल। मुझे अपने हजूर से खारिज न कर और अपनी रूह को मुझसे जुदा न कर। अपनी निजात की शादमानी मुझे फिर अनायत कर और मुस्तैद रूह से मुझे संभाल। तब मैं खताकारों को तेरी राहें सिखाऊंगा और गुनाहगार तेरी तरफ रजू करेंगे। ऐ खुदा, ऐ मेरे निजात बख्श खुदा, मुझे खून के जुर्म से छुड़ा तो मेरी जुबान तेरी सदाकत का गीत गाएगी। ऐ खुदा, मेरे होंठों को खोल दे तो मेरे मुंह से तेरी सिताइश निकलेगी, क्योंकि कुर्बानी में तेरी खुशनुदी नहीं वरना मैं देता। सोखनी कुर्बानी से तुझे कुछ खुशी नहीं, शिकस्ता रूह खुदा की कुर्बानी है। ऐ खुदा, तू शिकस्ता और खस्ता दिल हकीर न जानेगा। अब मैं मेरी विक्रेडी की तहरीर करदा क्रिश्चियन साइंस की दर्सी किताब साइंस और सेहत आयात की कुंजी के साथ मैं से ली गई तहरीरें पढ़ूंगा। साइंस और सेहत। गुनाह की तकलीफ से बचने का तरीका कर गुनाह को तर्क करना है और कोई राह नहीं है। गलत काम पर शर्मिंदगी इस्लाह की जानब एक कदम है, लेकिन बहुत आसान कदम है। अकल के बायस जो अगला और बड़ा कदम उठाने की ज़रूरत है वो वफादारी की गुंजाइश है, यानी इस्लाह। यहाँ तक हमें हालात के दबाव में रखा जाता है, आजमाइश हमें जुर्म को दोहराने की दावत देती है और जो कुछ हुआ होता है उसके इवज़ गमों अलम मिलते हैं। ये हमेशा होगा जब तक हम ये नहीं सीखते कि अदल के कानून में कोई रियायत नहीं और हमें कौड़ी कौड़ी अदा करना होगी। जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा और ये लबरेज होगा और बाहर चलकेगा। मुकद्दसीन और गुनाहगार अपना मुकम्मल अजर पाते हैं, लेकिन हमेशा इस दुनिया में ही नहीं। मसीह के पैरोकारों ने उसका प्याला पिया ناشکری اور ایزا نے اسے لبالب بھر دیا، لیکن خدا ہمارے دور کے مطابق ہمیں قوت دیتے ہوئے فہم اور الفت میں اپنی محبت کی دولت انڈیلتا ہے۔ گناہگار کسی ہرے درخت کی مانند پھلتے ہیں، لیکن دور اندیش ہوتے ہوئے زبور نویس ان کا اختتام یعنی دکھوں کی بدولت گناہ کی تباہی دیکھتا ہے۔ ایک رسول کہتا ہے کہ خدا کا بیٹا مسیح اس لیے آیا کہ ابلیس کے کاموں کو مٹائے۔ ہمیں ہمارے الہی نمونے کی پیروی کرنی چاہیے اور بدی کے سب کاموں کو بشمول غلطی اور بیماری نیست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہم گناہ کے کفارے سے بچ نہیں سکتے۔ کلام کہتا ہے کہ اگر ہم مسیح کا انکار کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارا انکار کرے گا۔ الہی محبت انسان کی اصلاح کرتی اور اس پر حکمرانی کرتی ہے۔ انسان معافی مانگ سکتے ہیں، لیکن صرف الہی اصول ہی گناہگار کی اصلاح کرتا ہے۔ خدا اس حکمت سے الگ نہیں جو وہ عطا کرتا ہے۔ جو صلاحیتیں وہ ہمیں دیتا ہے ہمیں انہیں فروغ دینا چاہیے۔ ہمارے غلط کاموں یا نامکمل کاموں کے لیے معافی پانے کی خاطر اسے پکارنا اس بیکار مفروضے کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ہمیں معافی مانگنے کے سوا کچھ نہیں کرنا، اور اس کے بعد ہم اس جرم کو دہرانے کے لیے آزاد ہو جائیں گے۔ گناہ کے نتیجے میں تکلیف کا موجب بننا گناہ کو تباہ کرنے کا وسیلہ ہے۔ گناہ میں ملنے والی ہر فرضی تسکین اس کے متوازی درد سے زیادہ آراستہ ہوگی، جب تک کہ مادی زندگی اور گناہ پر یقین تباہ نہیں کر دیا جاتا۔ آسمان یعنی ہستی کی ہم آہنگی پر پہنچنے کے لیے ہمیں الہی اصول کی ہستی کو سمجھنا ہوگا۔ اپنی نجات کے لیے کوشش کریں، یہ زندگی اور محبت کا مطالبہ ہے، کیونکہ یہاں پہنچنے کے لیے خدا آپ کے ساتھ کام کرتا ہے۔ قائم رہو جب تک کہ میں نہ آؤں۔ اپنے اجر کا انتظار کریں اور نیک کام کرنے میں ہمت نہ ہاریں۔ اگر آپ کی کوششیں خوف و ہراس کی مشکلات میں گھری ہیں اور آپ کو موجودہ کوئی اجر نہیں مل رہا، واپس غلطی پر مت جائیں اور نہ ہی اس دوڑ میں کاہل ہو جائیں۔ جب جنگ کا دھواں چھٹ جاتا ہے آپ اس اچھائی کو جان جائیں گے جو آپ نے کی ہے، اور آپ کے حق کے مطابق آپ کو ملے گا۔ خدا ہمیں آزمائش سے نکالنے کے لیے جلد باز نہیں ہے، کیونکہ محبت کا مطلب ہے کہ آپ کو آزمایا اور پاک کیا جائے۔ عدل کے لیے گناہگار کو اصلاح کی ضرورت ہے۔ رحم صرف تبھی قرض بخشتا ہے جب عدل تصدیق کرتا ہے۔ انتقام ناقابل تسخیر ہوتا ہے، وہ غضب جو محض اطمینان بخشتا ہے نیست نہیں ہوتا، بلکہ جزوی طور پر خوش کرتا ہے۔ ہمیں گناہ سے بچانے کے لیے حکمت اور محبت خود کی بہت سی قربانیوں کا مطالبہ کر سکتی ہے۔ ایک قربانی خواہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، گناہ کا کفارہ ادا کرنے کے لیے ناکافی ہے۔ شہوت، بغض اور ہر طرح کی بدکاری بیمار کے عقائد ہیں، اور آپ انہیں صرف ان بدکار مقاصد کو ختم کرنے سے تباہ کر سکتے ہیں جن سے یہ جنم لیتے ہیں۔ اگر کسی معاف کیے گئے انسانی فہم سے بدی ختم ہو چکی ہے، حالانکہ اس کے اثرات ابھی بھی اس شخص پر ہوں گے، تو آپ اس بدترتیبی کو ختم کر سکتے ہیں۔ جیسے خدا کی شریعت مکمل ہو جاتی ہے اور اصلاح جرم کو ختم کر دیتی ہے۔ صحت مند گناہگار سخت ترین گناہگار ہوتا ہے۔ یہ احساس کہ گناہ میں حقیقی خوشی نہیں ہے، کرسچن سائنس کی الہیات کے سب سے اہم نکات میں سے ایک ہے۔ گناہ کے اس نئے اور حقیقی منظر کو گناہگار پر اجاگر کریں، اس پر ظاہر کریں کہ گناہ کوئی اطمینان نہیں بخشتا، اور یہ علم اس کی اخلاقی ہمت کو مضبوط کرتا ہے اور بدی پر فتح پانے اور اچھائی سے محبت کرنے کی اس کی قابلیت کو فروغ دیتا ہے۔ بیمار کو شفا دینا اور گناہگار کی اصلاح کرنا کرسچن سائنس میں ایک ہی بات ہے۔ دونوں شفاؤں کے لیے ایک ہی طریقہ کار کی ضرورت ہوتی ہے، اور دونوں سچائی میں غیر منفق ہیں۔ نفرت، حسد، بے ایمانی، خوف اور ایسی دیگر چیزیں انسان کو بیمار بناتی ہیں، اور جب تک یہ بدن میں ذہنی طور پر خود کو بہتر نہیں بناتا، نہ مادی ادویات نہ ہی عقل مستقل طور پر اس کی مدد کر سکتی ہے، اور یوں اسے اس کے تباہ کرنے والوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ بنیادی غلطی فانی عقل ہے۔ نفرت ظالمانہ خواہشات کو بھڑکاتی ہے، بدکار عزائم اور مقاصد किसी भी ऐसे इंसान को जो नीच किस्म की जवान मर्दी से ऊपर हो, एक मुसीबत ज़्यादा मायूस इंसान बनाते हैं। क्रिश्चियन साइंस इंसान को ख्वाहिशात का मालिक बनने, शफकत के साथ नफरत को एक तातुल में रोकने, पाकिजगी के साथ शहवत पर, खैरात के साथ बदले पर फतह पाने और ईमानदारी के साथ फरेब पर काबू पाने का हुक्म देती है। अगर आप सेहत, खुशी और कामयाबी के खिलाफ साजिशों की एक फौज नहीं लाना चाहते तो इन गलतियों को इब्तदाई मरहल में ही तलफ कर दें। ये आपको गलती के खिलाफ सच्चे मुनसफ सालसी के पास लाएंगे। मुनसफ आपको इंसाफ तक ले जाएगा और इखलाकी कानून की सज़ा फ़ानी अक्ल और बदन पर सादर की जाएगी। तब तक दोनों को हथकड़ी लगा दी जाएगी जब तक दोहरी अदायगी नहीं होगी, जब तक खुदा के साथ आपका अकाउंट मतवाजन नहीं होगा। आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। नेक इंसान बिलाखिर गुनाह के खौफ पर फतह पाएगा। ये गुनाह की ज़रूरत है कि ये खुद को तबाह करे। लाफानी इंसान खुदा यानी अच्छाई की हुक्मरानी जाहिर करता है, जिसके मुकाबले गुनाह में कोई ताकत नहीं है। गुनाह की तबाही मुआफ़ी का इलाही तरीक़ाकार है। इलाही ज़िंदगी मौत को तबाह करती है, सच्चाई गलती को नेस्त करती है और मोहब्बत नफरत को नेस्त करती है। तबाह होने के बाद गुनाह को माफ़ी की किसी और सूरत की ज़रूरत नहीं रहती। अब मैं मेरी बेकरडी की जानब से चर्च मैनुअल में दिए गए रोज़ाना के 3 फ़राइज़ पढ़ूंगा। रोज़मर्रा की दुआ। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि हर रोज़ ये दुआ करें, तेरी बादशाही आए, इलाही हक, ज़िंदगी और मोहब्बत की सल्तनत मुझ में कायम हो और सब गुनाह मुझसे खारिज हो जाएं, और तेरा कलाम सब इंसानों की मोहब्बत को वाफिर करे और उन पर हुकूमत करे। मकासद और अमाल का एक असूल। ना कोई मुखालफत, ना ही कोई महज ज़ाती वाबस्तगी। मादरी चर्च के किसी रुकन के मकासद या अमाल पर असरअंदाज होने चाहिए। साइंस में सिर्फ इलाही मोहब्बत हुकूमत करती है और एक मसीही साइंसदान गुनाह को रद्द करने से हकीकी भाईचारे, खैरात पसंदी और मुआफ़ी से मोहब्बत की चीरियाँ साजिशों की अक्कासी करता है। इस चर्च के तमाम अराकीन को सब गुनाहों से, गलत किस्म की पेशन गोइयों, मुनसफियों, मजम्मतों, इसलाहों, गलत तासरात को लेने और गलत मुतासर होने से आज़ाद रहने के लिए रोज़ाना ख्याल रखना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। फ़र्ज़ के लिए चौकसी। इस चर्च के हर रुकन का ये फ़र्ज़ है कि वो हर रोज़ जारहाना ज़हनी आरा के ख़िलाफ़ ख़ुद को तैयार रखे और खुदा और अपने कायद और इंसानों के लिए अपने फ़राइज़ को ना कभी भूले और ना कभी नज़रअंदाज करे। उसके कामों के बायस उसका इंसाफ होगा, वो बेकसूर या कसूरवार होगा।